तथापि कभी कभी वे अपने समसामयिक शासकों तथा संरक्षकों की जीवन कथा लेखन में प्रवृत्त हुए। साहित्य के इस वर्ग को चरित्र कहा गया। वैदिक आख्यानों को परिवर्तित चरित्र साहित्य का पूर्व रूप कहा जा सकता है। यहाँ मैं इन चरित्रों को उनसे पृथक करना चाहता हूँ जो कि राजकीय प्रलेखों तथा प्रशस्तियों के आधार पर लिखे गए और जिस कारण इन्हें इतिवृत्त कहना अधिक उपयुक्त होगा। उदाहरणार्थ बाण रचित हर्षचरित्र। हर्षचरित्र प्रथम वर्ग में वे जीवन रचित भी आएंगे जो महान धार्मिक पुरुषों की जीवन कथा से संबंध है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि रामायण को भी राम के चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामस्य चरितम कृतसन्न कुरु ऋषि सत्तम रामायण ब्रह्मा की वाल्मीकि से प्रार्थना। इस प्रकार चरित्र साहित्य पर्याप्त प्राचीन है। भवभूति विरचित महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र निसंदेह राम के उपरोक्त चरित्र पर आधारित है। भास का एक प्राचीनतर नाटक बाल रचित भी उसी आदर्श पर लिखा गया है। यह सच है कि इन पुस्तकों का इसके अतिरिक्त कार्य ऐतिहासिक महत्व नहीं है कि ये विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को आगे बढ़ाती है। जीवन कथा के स्वरूप वाली कुछ और भी कृतियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिक प्रणय कथा कहना अधिक उपयुक्त होगा। इन पुस्तकों का कथानक एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति के ऊपर होता है, किंतु इसमें लेखक की कल्पना तथा अलंकारिक प्रदर्शन का बहुत अधिक पुट होता है। भास विरचित स्वप्नवास वदत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायन तथा कालिदास लिखित महामालविकाग्नि मित्रम इसी वर्ग के अंदर आएंगे। इस श्रृंखला के एक परिवर्तित दृष्टांत के रूप में हम पद्मगुप्त लिखित 1005 ईस्वी नव साहसांग चरित को ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने एक पौराणिक कथा के परिवेश में मालवा के सिंधुराज नव साहसांग का इतिहास देने का प्रयास किया है। इन कृतियों के प्रसंग में यह विचारणीय है कि यद्यपि इनका मूल कथानक किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर आधारित है, किंतु इसे पौराणिक कथाओं अथवा कल्पनाओं से मुक्त रखने की चेष्टा नहीं की गई है। काव्यात्मक अलंकारों से पूर्ण है तथा इनमें घटनाओं के यथातथ्य निरूपण अथवा प्रमाणित विवरण की अपेक्षा काव्यात्मक उत्कृष्टता लाने पर अधिक ध्यान दिया गया है। ऐतिहासिक तथ्य उसी सीमा तक दिए गए हैं जहाँ तक कि वे काव्यात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रसंग में दो अन्य ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है जो इतिहास के अपेक्षाकृत अधिक निकट हैं, यद्यपि वे उपरोक्त दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं हैं। ये हैं बाकपतिराज लिखित गौड बहु तथा बिलहन रचित विक्रमांग देवचरित। प्रथम में कवि के संरक्षक कनौज शासक यशो वर्मन द्वारा किसी गौड़ शासक की पराजय का विवरण है। इस शासक का नाम नहीं दिया गया है। विक्रमांक देवचरित में चालुक्य शासन विक्रमादित्य की जीवन कथा दी गई है। बाण रचित हस्तचरित तथा कलहन रचित राजतरंगिणी इसी कोटि से उद्भूत हैं, किंतु इनके विकसित तथा विशिष्ट ऐतिहासिक स्वरूप के कारण इन्हें इतिवृत्त के अंतर्गत रखा गया है। ऐतिहासिक लेखन की एक स्वतंत्र कोटि के रूप में इन पर विचार करने के पूर्व हम धार्मिक जीवन कथाओं पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। हम लोग पहले ही वैदिक साहित्य में वंश सूचियों का उल्लेख कर चुके हैं, जिसमें कभी कभी 58 तथा 60 नामों तक शिक्षकों की अनुक्रमिक सूची दी गई है। सामान्य रूप में यह विश्वास किया जाता है कि सूची के प्रारंभ में दिए गए देवताओं के नामों को छोड़कर मनुष्यों के नाम अधिक संभवतया ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं, किंतु ये केवल नाम मात्र हैं एवं जीवन कथा संबंधी अन्य कोई विवरण नहीं मिलता। उपनिषदों में अवश्य ही व्यक्तियों के दार्शनिक विश्वासों तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संवादों का लेखन हुआ है, किंतु यहाँ भी विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं के साथ नामों का आकस्मिक संबंध मात्र दिखाई पड़ता है तथा इन व्यक्तियों के जीवन इत्यादि के विषय में अधिक कुछ नहीं ज्ञात होता। भारतीय लेखन में एक नियमित पारंपरिक जीवन कथा अथवा संघ के इतिहास के अनुप्रयोग का श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है। यह स्मरणीय है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म के प्रारंभिक धर्मानुयायियों का ध्यान शास्त्रता के जीवन के प्रति उतना अधिक नहीं है जितना कि उनकी शिक्षाओं के ऊपर। इसी कारण प्रारंभिक पाली ग्रंथों में हम बुद्ध की उतनी व्यवस्थित जीवन कथा नहीं पाते जितनी कि महावस्तु, ललित विस्तर तथा निदान कथा जैसे प्रवर्तित ग्रंथों में प्राप्त होती है। यद्यपि एक विद्वान द्वारा यह सुझाव प्रस्तावित हुआ है कि मूल विनय के स्कंधक भाग के प्रारंभ में बुद्ध की उनके जन्म से लेकर शिक्षण कार्य की अवस्था तक की जीवन कथा दी गई थी, यह मानना अधिक समचीनी प्रतीत होता है कि बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति से प्रारंभ होकर पाली विनय वस्तुतः मूल तथा ऐतिहासिक स्थिति का अनुसरण करता है। तथापि प्रारंभिक पाली ग्रंथों में यत्र तत्र ऐसे कई सूक्त तथा अवतरण मिलते हैं जिनके आधार पर बुद्ध की एक व्यवस्थित जीवन कथा प्राप्त होती है। बुद्ध की जीवनी पर प्रवर्तित ग्रंथों के साथ तुलना करने पर हम यह रोचक तथ्य पाते हैं कि इन प्रारंभिक अवतरणों में ऐतिहासिकता को अवरुद्ध करने वाली पौराणिकता का प्रायः अभाव दिखाई पड़ता है। इन अवतरणों में पुराण कथाएं बहुत ही कम हैं तथा इनमें अतिशयोक्ति की मात्रा भी बहुत कम है। इन कारणों से ऐतिहासिक सत्य बहुत कम आचरण हुआ है। बुद्ध के प्रवर्तित ईश्वरीकरण के परिणाम स्वरूप प्रवर्तित जीवनियों, महावस्तु, ललित विस्तार तथा निदान कथा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। बुद्ध की जीवनी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में प्रारंभिक लेखकों द्वारा मौन ग्रहण अथवा उनके समान विवेचन ने काल्पनिक कथाओं तथा पुराण कथाओं के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ रखा था। यह एक रोचक तथ्य है कि ये सभी बुद्धत्व प्राप्ति तक की ही बुद्ध की जीवनी प्रदान करते हैं। अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद भी इसी कोटि में आते हैं। पहले ग्रंथ का कथानक बुद्ध का जीवनी है जबकि दूसरे में नंद द्वारा बौद्ध धर्म के स्वीकरण की कथा दी गई है। ये ग्रंथ अलंकारिक भाषा में हैं तथा साहित्यिक रचनाओं के रूप में अधिक मूल्यवान हैं। जैन पटावलियों में पटावलियां भी पौराणिकता के दोष से संयुक्त दिखाई पड़ती है। इनमें उनके तीर्थंकरों के विषय में समान प्रकार का विवरण दिया गया है जिनमें ऐतिहासिक भावना का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। यह अवश्य है कि चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नामों के साथ विभिन्न कथाओं तथा किंवदंतियों का भी इनमें समावेश हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक लेखन के चौथे वर्ग का प्रतिनिधित्व बाण विरचित, हर्षचरित तथा कलहन विरचित राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों द्वारा होता है। हर्षचरित एक समसामयिक लेखक द्वारा प्राथमिक ज्ञान पर आधारित एक शासक विशेष से संबंध इतिवृत्त है। राजतरंगिणी एक शासन वंशीय इतिवृत्त है जिसे पूर्ववर्ती इतिवृत्तों, प्राचीन लेखों एवं राजकीय प्रलेखों के आधार पर लिखा गया है। एक इतिवृत्ताकार के रूप में वान के मूल्यांकन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उसकी कृति की प्रामाणिकता अन्य साक्ष्यों से भी सिद्ध होती है और इस कारण इसे हर्ष के प्रारंभिक जीवन पर एक प्रामाणिक साक्ष्य स्वीकार किया जाता है। किंतु इतिवृत्तकार के साथ साथ वान कवि भी था। उसमें स्थित कवि के कारण ही हम कहीं कहीं मानवीय कार्य व्यापारों में दैवी हस्तक्षेप, सपनों के सत्य होने में विश्वास तथा चमत्कारी कार्यों के अस्तित्व की चर्चा पाते हैं। कहीं कहीं काव्यात्मक चातुर्य के प्रकाशन की प्रबल आकांक्षा के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं गौण हो गई दिखाई पड़ती हैं। कलहन अपेक्षाकृत कहीं अधिक संतुलित इतिवृत्तकार है। उसने अपने ग्रंथ के लिए और अधिक व्यापक कथानक अर्थात कश्मीर का इतिहास लिया है तथा निर्णय की निष्पक्षता प्रदर्शित करता है। वह स्वयं कहता है कि केवल वही इतिहासकार प्रशंसा का पात्र है जो एक दंडाधीश के समान पूर्वाग्रहों से सर्वथा मुक्त है। वह केवल ऐतिहासिक पात्रों का विस्तारपूर्ण निरूपण प्रस्तुत करता है अपितु उनकी वैदेशिक नीतियों एवं प्रशासन इत्यादि की भी चर्चा करता है। ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में आधारहीन किंवदंतियों एवं कथाओं की उपेक्षा करते हुए वह एक समीक्षात्मक दृष्टि संपन्न वह एक समीक्षात्मक दृष्टि संपन्न इतिहासकार के रूप में उपस्थित होता है। कभी कभी वह किसी घटना विशेष पर प्राप्त विविध विवरणों को देता है एवं स्वयं अपनी निर्णायक बुद्धि द्वारा उनके मिथ्यात्व का प्रदर्शन करता है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य विषय है कि एक इतिहास लेखक के रूप में कलहन ने इतिहास अध्ययन से शिक्षाएं प्राप्त करने की चेष्टा की है। एक उदाहरण के रूप में हम सिरहशिला के दुर्ग के विरुद्ध जयसी की तैयारियों पर उसकी टिप्पणी को ले सकते हैं, जिसमें वह कहता है कि वह शत्रु के साधनों को बढ़ा कर देखने तथा उस पर आक्रमण करने में अनावश्यक तर्क वितर्क करने में से असफलता ही प्राप्त होती है। रात तरंगनी में इस प्रकार के दृष्टांत प्रभुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष: भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणाएं एवं परंपरा विवादास्पद रही हैं। कुछ लेखकों के विचार में, जिनमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों सम्मिलित हैं, प्राचीन भारतीयों की इतिहास लेखन में अभिरुचि नहीं थी, क्योंकि एक तो वे दैवी शक्तियों के समक्ष स्वयं को सर्वथा नगण्य समझते थे, इसीलिए हीनता या जीवन की व्यर्थता की भावना का कोई इतिहास नहीं हो सकता। दूसरे, मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य ने उन्हें भौतिक जगत से विमुख कर दिया। इसके अतिरिक्त भारतीयों के मन में कालबोध, जो इतिहास का मूलाधार है, गौण तत्व था। इस आलोचना के उत्तर में कहा जा सकता है कि यह ठीक है कि प्राचीन भारतीयों ने इस प्रकार का इतिहास नहीं लिखा जैसा कि वर्तमान में परिभाषित होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी इतिहास लेखन में रुचि नहीं थी। वास्तव में भारतीयों के इतिहास लेखन की उनकी विशिष्ट अवधारणा थी और उसी के संदर्भ में प्राचीन इतिहास लेखन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्राचीन भारतीय न तो जीवन से विमुख थे और न पारलौकिक विचार ने उन्हें विमुख होने दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा यदि मोक्ष की ओर उन्मुख होती है तो मोक्ष प्राप्ति तक बाह्य जीवन व्यवहार से विमुख होने का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार कर्म के सिद्धांत का भी भाग्यवाद से संबंध स्थापित करना भी भ्रांत धारणा है। जो ऐसा सोचते हैं वे वास्तव में भारतीय जीवन पद्धति में कर्म के अवधारणा और उसके महत्व को आत्मसात करने में असफल रहे हैं। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि भारतीय चिंतन में इतिहास का निर्माण कुछ जनों महान व्यक्तियों द्वारा होता है। भारतीय परंपरा में अवतारवाद के सिद्धांत के मर्म को भी ऐतिहासिकता के संदर्भ में समझना चाहिए। अवतारवाद के सिद्धांत से यदि धर्म दृष्टि को पृथक कर दिया जाए तो विविध अवतारों को महान व्यक्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इस सिद्धांत में एक और निहितार्थ भी छिपा हुआ है। अवतारी व्यक्ति दुष्टता के प्रतीक को नष्ट करता है। इस इतिहास में इस प्रकार विरोधी शक्तियों का द्वैध आवश्यक है, जिसके बिना इतिहास के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भारतीयों की दृष्टि में अतीत के विषय में जो वस्तुतः महत्वपूर्ण है वह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त विचार तथा आदर्श है, न कि ऐतिहासिक विवरणों का निरंतर। वस्तुतः यह मूल्यों की बात है। किसी समाज या संस्कृति में वे ही बात सुरक्षित रखी जाती हैं जिन्हें वह अपने लिए आवश्यक तथा मूल्यवान मानता है। भारत में अर्थ या भौतिक शक्ति को सर्वोपरि मूल कभी नहीं माना गया। उसकी मूल शक्ति आत्मोत्कर्ष में निहित है। वचन और आदर्श व्यक्ति के जीवन को बांधते हैं, इसीलिए प्राचीन भारत में वचनों को उनके प्रस्तोता से अधिक महत्व दिया गया। इसीलिए प्राचीन साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि होते हुए भी उनके रचयिताओं के विषय में हमारा ज्ञान नगण्य है। वेद, पुराण तथा अन्य ग्रंथ साहित्यिक परंपरा को प्रकट करते हैं, लेकिन उनके रचनाकारों के विषय में बहुत कम जानकारी देते हैं। फिर भी इस साहित्य में उल्लेखित अनेक सूत्र इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। ज्ञान की इस शाखा को इतिहास वेद कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार तीन वेद शाक, ऋक, यजुस वेद त्रयी कहलाते हैं तथा इतिहास वेद के साथ वेद कहे जाते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। ज्ञान की इस शाखा को इतिहास वेद कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार तीन वेद साम, ऋक, यजुस वेद त्रयी कहलाते हैं तथा इतिहास वेद के साथ वेद कहे जाते हैं। इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र सभी को सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मण युग में पुराणों ने निश्चित इतिहास स्वरूप ग्रहण कर लिया था। यज्ञ के अवसर पर उनमें दिए गए विवरणों का श्रवण किया जाता था। अर्थशास्त्र में राजकीय विवरणों की सूची तथा उनके लेखन से संबद्ध अधिकारी गुप्त युग की प्रशस्तियां तथा अक्षय पटलिक जैसे अधिकारी सभी इसी के साक्षी हैं कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की निजी परंपरा विद्यमान थी। यह दूसरी बात है, उस समय के तत्संबंधी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भारतीय इतिहास लेखन से संबंधित सामग्री को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक तथा पुराण कथाएं, दूसरा शासन वंशीय प्रलेख, तीसरा जीवन चरित्र तथा चौथा इतिवृत्त। प्रथम वर्ग के अंतर्गत वह साहित्य है जिसमें ऐतिहासिक सामग्री धार्मिक तथा पुराण कथाओं के साथ घनिष्ठ रूप से संलग्न है। उदाहरण के लिए बृहद देवता में एक पूरे सूक्त को इतिहास सूक्त की संज्ञा दी गई है। वैदिक इतिहास में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक लेखनों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। वंश गाथाएं, नराशंसी एवं दान स्तुति। वंश में पुरोहितों एवं राजाओं की वंशावलियां दी गई हैं, जबकि शेष तीन राजकीय जननायकों की प्रशंसा से संबंधित हैं। पुराण कथाओं द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकने का एक अन्य दृष्टांत पुरुष सूक्त है। इस वर्ग के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण है, जिनमें पांच बातों का विवेचन स्वीकार किया गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरानी तथा वंशानुचारित। पुराणों के विषय में इस तथ्य विशेष को स्मरण रखना चाहिए कि वे मनुष्य इतिहास को सार्वभौमिक इतिहास के संदर्भ में रखते तथा समझते हैं। दूसरे वर्ग में शासन वंशीय प्रलेखों को रखा गया है। प्राचीन काल में प्रारंभ में शासकीय विवरणों के लेखन का कार्य ब्राह्मण करते थे, परंतु कालांतर में प्रलेखों के लिखने के लिए शासकों ने विशिष्ट अधिकारियों को नियुक्त करना प्रारंभ किया। अशोक के लघु शिलालेख में कर्णिक नामक अधिकारी और गुप्त अभिलेखों ने पटालाधिकृत को राजकीय प्रलेखों का प्रधान संग्रहक कहा जा सकता है। हर्ष के समय तक इस विभाग की निरंतरता बनी रही, परंतु विशिष्ट कारणों से ये प्रलेख सुरक्षित नहीं रह सके। परंतु प्रलेखों का अस्तित्व निसंदेह इतिहास लेखन के अस्तित्व एवं स्वरूप को प्रकट करता है। तीसरे वर्ग में चरित्र साहित्य की चर्चा की जा सकती है। वैदिक प्राख्यानों को परिवर्तित चरित्र साहित्य का पूर्व रूप कहा जा सकता है। इस प्रकार चरित्र साहित्य का इतिहास पर्याप्त प्राचीन है। इस संदर्भ में स्वप्न बाष्पदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायन, नवसहंसांक चरित्र, गौडबहो, विक्रमांक देवचरित जैसी रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय इतिहास लेखन के चौथे वर्ग का प्रतिनिधित्व बाण विरचित, हर्षचरित तथा कलहन विरचित, राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों द्वारा होता है। पहला शासक विशेष से संबंध इतिवृत्त है, तो दूसरा शासन वंशीय इतिवृत्त है, जिसे पूर्ववर्ती इतिवृत्तों, प्रलेखों तथा प्राचीन लेखों के आधार पर लिखा गया है। समाप्त।